वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम मितम तम सजीव साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सर्वदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्व सद्गुण पूर्णां ताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमां जस्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। पढ़िए नहीं है यह निर्विवाद सत्य है कि सभी जीवों में भगवान है और उसमें भी विशेष करके मनुष्यों में भी ब्राह्मण वैष्णव आदि में वे प्रकट हैं। तो इस नाते से कि भगवान सब में हैं मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस गौर पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, भिक्षा करता हूँ कि आप कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति मुझे प्रदान करें, ऐसे शुभकामना करें। आज गौर पूर्णिमा है तो सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस तिथि को नमस्कार कर रहे हैं। चौदह सौ सात शताब्द वर्ष था और फागुन का महीना उसमें उस वर्ष, और फागुन के महीने में वो भी पूर्णिमा तिथि थी। उस पूर्णिमा को मैं वंदना कर रहा हूँ, वंदे प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि उस तिथि में इस दिन भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण अवतार लिए थे। फागुन महीने की पूर्णिमा को मैं प्रणाम करता हूँ जिसमें चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण अवतरित हुए हैं। अवतरित हुए किसके साथ? कृष्ण नाम भी अवतीर्ण, कृष्ण नाम भी भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हुए अवतीर्ण हुए। स्वयं कर रहे थे और सबसे करा रहे थे। और जीवन भर कराते रहे चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा की संध्या के समय प्रकट हुए थे। और सब मिला करके वे 24 वर्ष नवद्वीप में रहे। और 24 वर्ष में वे 24वें वर्ष में संन्यास ले करके वे जगन्नाथपुरी में आ गए। उसमें 6 वर्ष तो भ्रमण को भ्रमण करते रहे, साउथ इंडिया, वृंदावन आदि में घूमते रहे। किस लिए घूमते रहे? कीर्तन कराने के लिए, भगवान के नाम का संकीर्तन कराने के लिए घूमते रहे। सब जगह वे कीर्तन किए। ऐसा वर्णन है कि साउथ इंडिया में अनेक मत थे वैष्णवों में भी, तो सबको अपने मत में गौड़ीय सिद्धांत में भगवान चैतन्य ने खींचा। वैष्णवों में विशेष करके लक्ष्मी नारायण की उपासना करने वाले थे, कोई कोई शंकर जी के भी उपासक थे साउथ इंडिया में, माता काली के भी उपासक थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से वे सब कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का। तो इसीलिए कृष्ण कविराज गोस्वामी कह रहे हैं और तीर्ण कृष्ण नाम भी, भगवान के नाम कीर्तन के साथ अवतार लिए और उसी का प्रचार किए। यहाँ तक कि बाल्य अवस्था में नहीं, जब बिल्कुल बच्चे थे तब भी कृष्ण कीर्तन कराए, जन्म जब हुआ उस समय भी कीर्तन, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तब वे हरि हरि बोले और संयोग से ग्रहण लगा था पूर्णिमा को, तो सारे भक्त सब लोग स्नान करने गए, भक्त या अभक्त कोई भी गंगा जी में स्नान करने गए, जो जहाँ थे जिस देश में जिस स्थान में वहीं सबके मुख से भगवान का नाम निकल रहा था। ग्रहण लगा था सब जगह दिखाई देता था, तो उसके अनुसार बहुत दान देते थे लोग और गंगा स्नान करते थे। जहाँ जिसकी स्थिति थी, जो तीर्थ था, नदी थी, सरोवर, सब जगह स्नान करते थे और उस समय बरबस उनके मुख से भगवान का नाम आ ही रहा था। जन्म के समय ऐसी स्थिति थी और जब बच्चा थे तो उस समय भी नाम संकीर्तन करा रहे थे बाल्य भाव में ही। और वे बचपन में रोते थे, क्रंदन करते थे। सबसे पहला क्रंदन होता था उनका जन्म के बाद, तो वे कोई विशेष करके स्त्रियां उनके यहाँ आती थी, उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु रोते थे और स्त्रियों को बड़ी जिज्ञासा हुई, जब हरि हरि बोलती थी तब चुप हो जाते थे, या हरे कृष्ण कहते थे तब चुप हो जाते थे, हंसने लगते थे, तो उनको बड़ा कौतूहल हुआ बचपन में, तब ये नाम रख दी, स्त्रियों ने नाम रखा गौर हरि। चूंकि चैतन्य महाप्रभु गोरे थे और हरि हरि बोलने से प्रसन्न होते थे, तो इस बहाने से, रुदन के बहाने से भगवान ने कीर्तन कराया स्त्रियों से। बिल्कुल बच्चा थे वे, सूतिका गृह में थे, तो उस समय भी नारियों से कीर्तन कराए, सब जुट करके आती थी बच्चे को हंसाने के लिए, क्योंकि हंसता था केवल हरी हरी कहने से, हरि या भगवान कृष्ण का नाम है, तो इसीलिए माताओं ने गौर हरि नाम रख दिया। जब कोई उनके पास नहीं रहता था तब वे रोने लगते थे, इसीलिए उनको चुप कराने के लिए स्त्रियां आया करती थी। जब ही हरी हरी बोलना प्रारंभ करती थी तब ही वे चुप हो जाते थे, और नहीं तो रोने लगते थे। रुदन के बहाने उन्होंने हरिनाम गवाया। जब 5 वर्ष के हुए तब इनको स्लेट और पेंसिल दिया गया। पांच वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने विद्या आरंभ किया और उस समय भी कीर्तन कराते थे सबसे। जो भी साथी पढ़ने आते थे उस समय गंगादास एक पाठशाला खोले थे, उसमें चैतन्य महाप्रभु को दाखिल किया गया, नाम लिखाया गया। जब बहुत जल्दी विद्या में पारंगत हो गए, इसके बाद तुरंत ही वे स्वयं विद्यालय खोले। गंगादास जी के विद्यालय में ही वे पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे प्रत्येक व्याकरण के सूत्र को कृष्ण तात्पर्य है यही बताते थे। अगर कोई बच्चा पूछता था किसी सूत्र को तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की ऐसी प्रतिभा थी, वे किसी भी सूत्र के तात्पर्य को कृष्ण में बना देते थे। कृष्ण ही तात्पर्य है। वे प्रत्येक बच्चे से हर नाम गवाते थे। उनको विश्वास था बच्चों को कि ये सही अर्थ कर रहे हैं। वे सबसे पहले पढ़ाना प्रारंभ किए कलाप व्याकरण जो सबसे सरल व्याकरण है, सबसे सीधा है। और भगवान को पढ़ना क्या था, उनको तो सब कुछ ज्ञात ही था, स्वाभाविक कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी। शिक्षक बन गए थे, अध्यापक बन गए थे, फिर भी बच्चों को पढ़ाने में वे कीर्तन कराते रहते थे। एक बार की बात है, एक विद्यार्थी बिना स्नान के चला आया, तिलक नहीं किया था, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उस दिन क्लास नहीं दिए, पढ़ाए नहीं, बंद कर दिए स्कूल, पाठशाला बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि जाओ स्नान करके आओ, तिलक करके आओ। तिलक की बड़ी महिमा बताया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। तिलक के बिना यह शरीर शोभा नहीं देता है। जब स्नान करके तिलक करके विद्यार्थी आया तो उस समय भी चैतन्य महाप्रभु कहे तिलक तो करके आए, अब भगवान का नाम जपो। वही हरे कृष्ण कीर्तन चालू किए। जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया, इसलिए उनको पिंड दान करने के लिए एक गया जी आए और यहीं पर ईश्वरपुरी से इनकी भेंट हुई। उनके चरणों में प्रार्थना करके वे दीक्षा ले लिए, मंत्र ले लिए। तो ईश्वरपुरी ने नाम दिया कृष्ण चैतन्य। उसके बाद तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल संसार को भूल करके पूरा केवल हरि नाम ही कराने लगे। ये वृंदावन भागने लगे वहीं से। कटवा नाम का एक स्थान है, नवदीप के पास ही वहां ईश्वरपुरी आए थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु गंगा जी को पार करके झाड़े में उस पर गए कटवा, उन्होंने संन्यास लिया। बाद में कथा आएगी। बहुत नवदीप में लीला की, इतनी लीला की उसका बखान करना बड़ा कठिन है, गिनती करना कठिन है कि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इतनी लीला किया, इतनी अनंत लीला किया, उन लीलाओं को अनंत भी शेष नाग भी अंत नहीं कर सकते। सबसे पहले श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन प्रारंभ हुआ। श्रीवास पंडित जो पंच तत्व में एक तत्व है, भक्तावतार, श्रीवास पंडित भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने पुत्र के समान मानते थे। उनके आंगन में कीर्तन बहुत प्रसिद्ध था, भगवान चैतन्य निवाई का शुरू से ही कीर्तन कराते थे। जब गया से आए तब तो वृंदावन भागने लगे, प्रलाप करने लगे कि मैं कृष्ण के बिना नहीं रहूंगा। तो ये जो श्रीवास आंगन है आज भी बना हुआ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने सब स्थान को बनाया है। स्थान वही है, आंगन कुछ भले दूसरे रूप में हो गया लेकिन तो वहां कीर्तन होता था। और कीर्तन ऐसा होता था, शाम को भक्त लोग जुटते थे और रात भर कीर्तन होता था। दिन में तो होता ही था लेकिन श्रीवास जी के आंगन में किवाड़ बंद करके भीतर कीर्तन होता था। कीर्तन इतना उन्मादकारी था, इतना आकर्षक कि सभी भक्त नाचने में व्यस्त होते थे और गाने में सुंदर आलाप लेकर के नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों वहां कीर्तन करते थे। सैकड़ों भक्त कीर्तन गाते थे उसी आंगन में। इतना रस था कीर्तन में कि उस कीर्तन की आवाज से बाहर के लोग भी कहते थे निमाई सबको पागल बना दिया। जो अध्यापक पढ़ाने जाते थे वे कीर्तन की आवाज सुन करके विद्यालय नहीं जा पाते थे। वही पोथी पत्रा जो भी है किताब उसको फेंक करके लगते थे रास्ते में ही, हरे कृष्ण कीर्तन करके नाचने लगते थे। ऐसे श्रीवास पंडित के आंगन में नृत्य तो होता ही था, लेकिन उस आवाज को सुन करके, कीर्तन को सुन करके सभी विद्यार्थी पढ़ने नहीं जाते थे। अध्यापक खुद ही नाचने लगते थे, कीर्तन करने लगते थे। जहाँ सुनता था कोई बाहर आवाज सुन ले, कोई भी व्यक्ति बिना नाचे नहीं रह सकता था, बिना गाए नहीं रह सकता। एक दिन की बात है, भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, नित्यानंद प्रभु साथ में थे, गदाधर पंडित भी थे, अद्वैताचार्य आ गए थे। तो ऐसा कीर्तन हो रहा था कि एक दिन एक व्यक्ति को, एक ब्राह्मण को बिना सुने नहीं रहा गया, देखना चाहता था। वो शाम के समय ही आ करके पलंग के नीचे, खटिया के नीचे सो गया था, कोई हमको देखे नहीं। कीर्तन चालू हुआ, लेकिन उस दिन आनंद नहीं आ रहा था, मस्ती नहीं आ रही थी कीर्तन में। चैतन्य महाप्रभु ने रोका, कहा कि रोक दो, कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, इसका कारण है कोई बाह्य आदमी इस आंगन में प्रवेश कर गया है। तो खोजने पर पता लगा कि एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण उस आंगन में घुस गया था। उसको बहुत लालसा थी कि मैं कीर्तन देखूं कैसा भीतर कीर्तन होता है। तो उस दिन आनंद आया बिल्कुल नहीं आया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको कहे कि जल्दी निकलो। पहले उन्होंने कहा कि कोई बाह्य आदमी आ गया है, उसको निकालो। जब वो निकला तब जाकर के फिर आनंद आया, कीर्तन में आवेश आया। इस तरह से कीर्तन होता था, अंतरंग कीर्तन। जैसे भगवान ने रास किया था वृंदावन में, वैसे श्रीवास के आंगन में कीर्तन नृत्य किया है, कीर्तन रास। जब पौगंड अवस्था के थे, पौगंड अवस्था कहते हैं 5 से 6 से 10 वर्ष तक की अवस्था, बाल्यावस्था है 1 से 5 वर्ष तक, और 6 से 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था है। और 11 से लेकर के किशोर अवस्था चालू होती है। सोलह वर्ष की अवस्था यौवन माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ण यौवन में विवाह किया, पूर्ण यौवन। नवीन यौवन कहा जाता है। कोई कोई के मत से क्या है कि वे पूर्ण यौवन में विवाह किए, और किसी किसी के मत से नवीन यौवन में विवाह किए। विवाह जब हो रहा था उस समय भी केवल कीर्तन ही हो रहा था। श्री विष्णुप्रिया देवी से विवाह हुआ, उसके पहले श्री लक्ष्मी प्रिया जी से विवाह हुआ। दो विवाह हुआ था चैतन्य महाप्रभु का। जब चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश गए थे, उस समय बंगाल नहीं था, उसको पूर्वी बंगाल का तो इस समय जो बंगाल है तो वेस्ट बंगाल है ना, तो पूर्वी बंगाल वही बांग्लादेश है। भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां गए थे, एक बहुत बड़े भक्त वहां रहते थे, भक्त का क्या नाम था भूल रहा, तपन मिश्र। वहां भी कुछ दिन रहे। तपन मिश्र ने उनसे पूछा साधन और साध्य क्या है। साध्य तो है कृष्ण सेवा और साधन है एकमात्र हरि नाम, नाम लेना जपना। तो यही बताया भगवान ने। उस समय वे गीता पढ़ाते थे, गीता पढ़ा करके कुछ धन लाए विद्यार्थी थे, अध्यापक थे, स्वाभाविक वृत्ति थी ब्राह्मण वृत्ति। लेकिन इतना इकट्ठा हो गया कि उन्होंने ज्यादा धन राशि ब्राह्मणों को दे दिया वही, और कुछ अपने खर्चे के लिए लाए नवदीप। तो महा तपन मिश्र ने उनसे पूछा कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ किसी तीर्थ में रहना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप काशी जी चले जाइए, वहीं आपके साथ मैं भेंट करूंगा। जब चैतन्य महाप्रभु काशी जी गए तो तपन मिश्र के घर ही में प्रसाद बंद को खाते थे, भिक्षा लेते थे, और चंद्रशेखर ये तो कायस्थ थे, तो चैतन्य महाप्रभु भोजन चंद्रशेखर जी के यहाँ नहीं करते थे। यद्यपि सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर जी के घर ही मिले थे चैतन्य महाप्रभु, ते तपन मिश्र और चंद्रशेखर दो व्यक्ति थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के। तपन मिश्र के घर में श्रील प्रभुपाद जी गए थे, वहीं पर मुझे सौभाग्य मिला उनका दर्शन करने का। वो चंद्रशेखर जी दशाश्वमेध घाट पर रहते थे और तपन मिश्र याद नहीं है, तपन मिश्र रहते थे, मुझे सब याद है। विश्वेश्वरगंज में श्रील प्रभुपाद जी अनेक शिष्यों के साथ आए थे वाराणसी में, मैं उनके दर्शन के लिए गया था। एक अखबार में पढ़ा कि प्रभुपाद जी भारत के सन्यासी आए हैं अपने अमेरिकन शिष्यों के साथ, इस डेट पर इनका प्रोग्राम है। वे कीर्तन प्रारंभ करेंगे, कीर्तन प्रारंभ करेंगे सबसे पहले विश्वेश्वरगंज जाएंगे, विश्वेश्वरगंज के बाद वे दशाश्वमेध घाट पर जाएंगे। तो मैं समाचार पढ़ करके चला गया दर्शन करने। मैं आश्चर्यचकित हो गया, स्त्रियां साड़ी पहनी थी और बुक डिस्कशन हो रहा था। मैं एक किताब खरीदा भगवद गीता एज इट इज, उस समय बीबीटी का दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध थे वहाँ बनारस में, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण दो खंड में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के। वो इतना पुस्तक आकर्षक थी कि मैं उसे भी खरीद लिया। यद्यपि वो हमारे फाइनेंशियल पावर से बहुत ज़्यादा था, उस समय इतना महंगा किताब लेना संभव नहीं था। भगवद गीता तो ले लिया पहले, क्योंकि वो 50 रुपये में मिलता था। कृष्ण बुक का सुंदर, उसकी सुंदरता देख करके मैं आकृष्ट हो गया, पढ़ा नहीं। पर मैं आग्रह कर रहा था एक भक्त से, तमाल कृष्ण गोस्वामी से मैं कहा कि मुझे ये पुस्तक दिला दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यू कम टू वृंदावन, मैं वृंदावन में दिला दूंगा। उन्होंने कहा तो मैं गया वृंदावन में, तमाल कृष्ण गोस्वामी उस समय गोस्वामी नहीं थे, उन्होंने कहा कि इस पुस्तक की ये दाम है, तो मैं धीरे धीरे जुटाने लगा कई लोगों से कह करके। एक हमारे चचेरे भाई थे, उनको मैं लिखा बनारस से कि हमको ये पुस्तक चाहिए, वृंदावन में लेना है। तब वे आए मेरे साथ वृंदावन, और तमाल कृष्ण गोस्वामी को मैं प्रणाम करके फिर मांगा, तो वे किताब को आधे दाम में दे दिए। जितना दाम कहते थे उतना नहीं लिए, अभी दाम छपा नहीं था। फिर भी उनके कथन अनुसार मुझे विश्वास हो गया, ये आधा दाम पर दे रहे हैं। ये पॉलिसी है, इस काम में अब भी मूल्य लिखा नहीं जाता है। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ करके बहुत आकर्षण हुआ। वृंदावन में आया, उस समय मंदिर बना नहीं था, चैतन्य महाप्रभु की दया थी कि उन्होंने प्रभुपाद से मिलाया। तो यही दिन है जिस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए और कृष्ण नाम के साथ उस समय सारा संसार संकीर्तन कर रहा था। सब जगह जो जहां थे वहीं, विशेष करके भक्त भगवान के, वो सब नाचने लगे। संयोग से चंद्र ग्रहण था, सब लोग स्नान करने गए, उसे कीर्तन करते थे। कृष्णदास कविराज भूषण कहते हैं, अकलंक पूर्ण अकलंक गौर हरि गौर चंद्र, अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, तो सकलंक चंद्र आर की प्रयोजन। यह सोच करके राहु ने ग्रास लिया चंद्रमा को, तो इसलिए ग्रहण लगा था। ग्रहण का अर्थ ही है राहु ग्रस्ता है। तो उत्तरक्षा करते हैं, क्यों राहु ग्रसा? तो उसने देखा कि जब अकलंक कालिमाहीन चंद्रमा उदित हुआ, तो इस सकलंक चंद्रमा की क्या जरूरत है? चंद्रमा में कलंक है, एक तो कालिमा है, काला धब्बा है चंद्रमा में, तो जो भी है वो राहु ने सोचा अब इसकी क्या जरूरत है जब इस पृथ्वी पर निष्कलंक अकलंक चंद्रमा उदित हो गया गौर चंद्र, तब इसकी जरूरत नहीं है। यह सोच करके वो ग्रास लिया। चैतन्य महाप्रभु अकलंक चंद्रमा है, इसको समझ सकते हैं कि कलंक क्या है। कलंक है अन्य कामना, उसको भागवत में कैतव कहा गया है। दुसंग कहिए कैतव आत्मवंचना, ये कैतव का अर्थ किया गया है आत्मवंचना, अपने आप को ठगना, अपने आप को धोखा में रखना। जब कोई व्यक्ति अपने आप अपना विनाश करना चाहता है तब उसको कौन बचाएगा? ये संसार की कामना है। कृष्ण और कृष्ण की भक्ति के अलावा अन्य कामना कहता वो कहिए प्रसंग कहिए कहता आत्मवंचना। और सिद्धार्थ स्वामी ने लिखा है कि कहता वो प्रधान क्या है? मोक्ष, मुक्ति की इच्छा रखना कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं, वैकुंठ में चला जाऊं या ब्रह्म में मिल जाऊं, यही सबसे बड़ा कहतव है, सबसे बड़ी सबसे बड़ा धोखा। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, मैं कृष्ण की सेवा न करूं, भगवान की सेवा की कोई वासना नहीं है और ब्रह्म में मिल जाने की वासना है, यह सबसे बड़ा धोखा है जीव का, जीव के साथ। वो यह नहीं जान रहा है कि मैं अपना ही विनाश कर रहा हूं। इसको कहता हूं कहा गया है। कृष्ण के अलावा, कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ भी चाहना, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब बेकार है, उससे जीव का हित होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसमें भी मुक्ति वासना सबसे घातक है। जहाँ मुक्ति की इच्छा होगी भक्ति का उदय ही नहीं हो सकता। जब इस ब्रज में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रहते थे रूप गोस्वामी, तो उस समय श्रीपाद बल्भाचार्य जी आए थे, मथुरा में रहते थे, मथुरा से यहाँ आए, तो उन्होंने सुना कि रूप गोस्वामी भक्ति और सामर सिंधु लिखे, तो उनकी इच्छा हो गई जरा देखें आपकी पुस्तक कैसी है। उस समय तो पत्ता पर लिखे थे, बड़े सुंदर अक्षरों में रूप गोस्वामी जी, उसके लक्षण में मोक्ष लघुता कृत अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम। ऐसा लिखा था कि अन्य अभिलाषा से शून्य जब कृष्णानुशीलनम है, कृष्ण की सेवा यही भक्ति है, उत्तम भक्ति। तो अन्य अभिलाषा में उन्होंने लिख लिया था धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी, इसको अन्य अभिलाषा, इससे शून्य कृष्ण सेवा ये उत्तम भक्ति है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी नहीं जीव गोस्वामी और सुन लिए, श्रीपाद बल्लभाचार्य ने कहा कि आपको मुक्ति को इतना हीन नहीं लिखना चाहिए, मुक्ति को भी आप सांसारिक उपलब्धि के विषय में रख दिए। तब जीव गोस्वामी को सहन नहीं हुआ, जब आचार्य जाने लगे मथुरा तब जीव गोस्वामी भी उनके साथ हो लिए। और जब आचार्य ने कहा आपके आपके ताऊ के नहीं ताऊ के चाचा के ग्रंथ को मैं देखा, उसमें एक बड़ी अनुचित बात लिख दिया है ना, मुक्ति को मोक्ष को इतना हीन कर दिया ये ठीक नहीं है। तब जीव गोस्वामी ने संकेत किया, अर्थ करने लगे कि ये मुक्ति को हीन नहीं कहे, मुक्ति की वासना को इच्छा को हृदय में इच्छा नहीं होनी चाहिए मोक्ष की, इच्छा होते ही फिर भक्ति की इच्छा नहीं होगी, कृष्ण से प्रेम नहीं होगा। तो बहुत देर तक बहस हुई रास्ते में और जीव गोस्वामी ने आचार्य को संतुष्ट कर दिया है, उन्होंने कहा कि ठीक है ये मुक्ति की वासना को उन्होंने लिखा है ठीक नहीं है। मुक्ति की वासना होने पर भक्ति का नाश हो जाता है, भगवान के सेवा की वासना हो नहीं पाती है। यह महादान भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रूप सनातन ने दिया, बहुत बड़ा दान है। एक श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है उद्धृत करके, हरे नामा हरे नामा ही केवल हम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व जपी अंगति। तीन बार हरि नाम, हरे नामा हरे नामा हरे नामा तीन बार क्यों कहा गया? तो वे बताते हैं तीन बार इसलिए कहा गया कि दृढ़ता के लिए हरि नाम है, हरि नाम हरि नाम। फिर एवं लगाया गया हरि नाम ही, और केवलम लगाया है। केवल हरि नाम भगवान का नाम इस कलयुग में और पढ़ने का, शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। कलो नास्ते व नास्ते व न अस्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा, अन्यथा गति अन्य साधन कुछ भी नहीं है। तो बहुत जोर देकर के कहा है हरे नामा हरे नामा व केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। इसको चैतन्य महाप्रभु ने केवल कहा ही नहीं, इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। हम लोगों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए, हरे नामा हरेर्नामा व केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व और इस हरिनाम को कैसे लेंगे, क्या योग्यता है, उन्होंने स्वयं बताया है। तीणादपि सुनी चेना तरोरी व सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनी हो सदा हरि। यदि सदा कीर्तन करना है तो इस तरह से बनना पड़ेगा। तीर्ण से भी नम्र होना पड़ेगा, एक घास के टुकड़े से भी अपने को हीन समझना होगा। तीर्णादपि सुनीचे न, तीर्णादपि घास का एक टुकड़ा होता है, तीर्ण का टुकड़ा उस पर कितने लोग पैर रखते हैं, कभी उठ करके प्रतिवाद नहीं किया। ऐसा नीच बनना पड़ेगा, नीच मन में नीच नहीं होना है कि मन में सोचना है कि मैं बहुत अधम हूँ, तरो दिवस सही सुनना और सहनशील होना चाहिए वृक्ष के समान। वृक्ष किसी से मांगता नहीं है, सुख ही है, मांगे तो जल ना मांगे, सुख करके मर जाता है फिर भी किसी से पानी तक नहीं मांगता है। तो इसी तरह से वैष्णव को सहनशील होना चाहिए। और कोई फल मांगता है तो उसको फल देता है कैसे, ढेला मारने पर। वृक्ष बहुत बड़ा उपकारी है, इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु वृक्ष को गुरु जैसे बता रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, वृक्ष तरु युवा, तरु के समान सहनशील होना चाहिए। वृक्ष सबको सब चीज देता है, अपनी लकड़ी देता है, उससे फर्नीचर बनता है, चौकट बनता है, कपाट बनता है, टेबल बनता है, सब कुछ बनता है। एक काठ द्वारा उपकार करता है। उसके पत्र पर हम लोग भोजन करते हैं, उसका लासा काम में आता है, गोंद काम में आता है, उसकी जड़ी बनती है, उसके जड़ से अनेक औषधि बनती है। हम लोग प्रयोग करते हैं जड़ी बूटी, तो जड़ी बूटी वृक्ष से ही मिलती है। गोबर काम में आता है, जलाने के लिए या शीत का निवारण करने के लिए अग्नि जलाते हैं। काठ कई रूप में काम आता है, अमानिना मान देना, अमानिना स्वयं मान न चाहना, मान देना और मान देना, मान देना मान दे, दूसरे को मान देना, यह एक बहुत बड़ा रोग है मनुष्यों में, सब जगह संसार में। व्यक्ति मान के लिए भूखा है, मान चाहता है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ये सुझाव दे रहे हैं, अमानिना मान की इच्छा मत करो और दूसरे को मान दो। ऐसा करोगे वृक्ष के समान सहिष्णु बनोगे, तेल के समान अधम बनोगे। तो कीर्तनी और सदाहरी, तो हरि का कीर्तन कर सकोगे सदा, कीर्तनी और सदाहरी। ऐसा बनने पर ही चार प्रकार से अपने को प्रस्तुत करने पर कीर्तन कर पाएगा, नहीं तो कीर्तन होगा नहीं। तेरे के समान अपने को अधम मान करके मन में नि, निर्भिमान रहे, अभिमान न आवे कि मैं यह हूँ वह हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ वैष्णव हूँ, और अमानिना मान देना, स्वयं मानना चाह करके किसी अयोग्य पात्र को भी मान देने में हिचकना नहीं चाहिए, क्या बिगड़ जाएगा। यदि किसी दीनहीन को आप मान देंगे, कह देंगे आइए महाराज कैसे हैं, बैठिए थोड़ा जल पीजिए, सुंदर वचन बोलना, पृथ्वीभ्याम त्रीणि रत्नानि, इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जलम अन्नम सुभाषितम, जल और अन्न भोजन देना, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ पाषाण संदेशो रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों ने पाषाण खंड को एक पत्थर के टुकड़े को रत्न कह दिया, रत्न असली है जल अन्न और सुंदर वचन। सबसे पहला मान है, कोई आता है चाहे अपने आश्रम में आवे या घर पर आवे तो आसन देना, बैठने के लिए स्थान, वो चाहे कुर्सी हो चाहे नीचे फर्श हो, ये पहला मान होता है। और फिर जल का पूछना, भोजन का पूछना, अन्न। सबसे पहला मान है सुभाषितम, सुंदर वचन। सुंदर वचन सबको अच्छा लगता है, मीठा वचन, कड़वी जबान कभी नहीं बोलनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम रहेंगे वृक्ष के समान सहिष्णु, अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करेंगे, वृक्ष सुख करके अनेक कामों में आता है, वो यहाँ तक कि मनुष्यों का शव उसको जला करके शुद्ध कर देता है, भोजन बनाता है, शीत का निवारण करता है, आग ताप ताप करके लोग शीत से मुक्त होते हैं। जैसे सब उत्पाद सह करके वृक्ष धर्म में लगा रहता है, अपने उपकार के कार्य में, ऐसे वैष्णव को होना चाहिए। और मान नहीं चाहना चाहिए बल्कि दूसरे को मान देना चाहिए, ये मान लेने की चीज नहीं है, अमानी रहना चाहिए। नम्र रह करके दूसरे का उपकार करते हुए, यहाँ तक कि शत्रु का भी उपकार करते हुए, किसी का भी, और जो कोई मांगता है अपनी चीज कोई वस्तु यदि है तो उसको देना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तब हम योग्य होंगे कृष्ण कीर्तन के, कीर्तनी और सदा हरि। इसमें अन्य आश्रय संबंध है, ऐसा बन करके कीर्तन करना चाहिए अथवा कीर्तन करने के लिए कीर्तन करते और करने वाले भक्त को ऐसा बन जाना चाहिए, ये दोनों बात है। ऐसा हो करके तब कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करना आसान होगा। दूसरों को मान देंगे तो उससे कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मान चाहने पर तो डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि सब जगह मान मिलता नहीं है और हम जितना चाहते हैं उतना मान नहीं मिल पाता है। पर मान देने में कोई खर्च नहीं है, दक्ष प्रजापति जो सती जी के पिता हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र, पर उनमें भी अहंकार के कारण बहुत संकट आ गया। और दक्ष प्रजेश हो गए थे प्रजापतियों के नायक। जरा ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी का पुत्र उनका, उनकी बेटी थी सती, दक्ष प्रजापति अपनी बेटी तक को आदर नहीं किया, मान नहीं दिए। सह नहीं सके, शिव जी का न उठना पहले जग में, शिव जी उठे नहीं, प्रणाम नहीं किए, इस पर और कितना दुर्वचन बोले। शिव जी उनके दामाद हैं, सती से विवाह हुआ था शिव जी का, जब पहले यज्ञ में दक्ष प्रजापति गए थे तो शिव जी भगवान और ब्रह्मा जी ये तीन नहीं उठे, प्रणाम नहीं किए, और सारे सभा के लोग प्रणाम किए, सारे देवता पितर और भूत के साथ सब प्रणाम किए, ब्राह्मण सब प्रणाम किए, लेकिन एक शिव जी प्रणाम नहीं किए, इस पर वे आग बबूला हो गए और भारी सभा में शिव जी को गाली देने लगे। यह व्यक्ति सदाचार नहीं जानता है, बहुत उदंड है। तो फिर ऐसा है तो इसके साथ आपने विवाह क्यों किया अपनी पुत्री का, कोई प्रश्न करे तो कहता है दक्ष क्या कहूं, मैं ब्रह्मा जी की बात में आ गया। ब्रह्मा जी कहे कि यह सबसे बड़ा अच्छा सुलक्षण वर है, तो इसके साथ मैं विवाह कर दिया। तो ब्रह्मा जी को भी गाली देने लगा, अपने पिता को भी, यह कह करके कि ये बुद्धिहीन है, इनको अनुभव नहीं है, ऐसा ऐसे व्यक्ति से विवाह करा दिए जो भूत प्रेत का नायक है, मुंडमाल धारण करता है, कभी स्नान नहीं करता, घर द्वार नहीं है और इसके माता पिता भी नहीं है। शिव जी के वास्तव में माता पिता नहीं है, वे बिना माता पिता के हैं, स्वयंभू हैं, यद्यपि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की आंख से हुई है, फिर भी क्रोध में बोल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से विवाह करा दिए, ये कभी स्नान नहीं करता है, नग्न रहता है, इतनी सारी दुनिया में वस्त्र होते हुए भी कभी वस्त्र पहना नहीं, यहाँ भी आया है तो नग्न आया है। क्या करूं मैं, जानते हुए भी कर दिया विवाह। तो शिव जी में दोष दृष्टि किया, इसी कारण से सती का अपमान किया, और जब गई दक्ष के घर यज्ञ में, उस समय सती ने देखा सब ब्राह्मण लोग बैठे हैं, स्वाहा हो रहा है, आहुति पड़ रही है, सभी देवताओं के लिए आसन था, यज्ञ भाग दिया जा रहा था और शिव जी का कोई आसन नहीं लगा था, उनका यज्ञ भाग बंद हो गया था। दक्ष नहीं किया था, जब शिव जी प्रणाम नहीं किए थे प्रथम यज्ञ में, तो कह रहा था कि मैं जानते हुए भी गलती कर दिया, ऐसे वर से अपनी बेटी को विवाह दिया। तो उसका क्रोध बढ़ता गया और दक्ष प्रजापति भगवान शिव को भली बुरी बात बोल करके चले गए। इसके बाद नंदीश्वर को सहन नहीं हुआ है। नंदीश्वर जो भगवान के बैल हैं, भगवान शिव के वाहन हैं, वो कहे कि ये शिव जी का अपमान करता है अपने को ब्राह्मण मान करके। जो जो लोग शिव का अपमान करते हैं ब्राह्मण वृत्ति में रहते हैं, ये सब भिखमंगे हो जाए और केवल जीविका के लिए ही यज्ञ करें, पूजा पाठ करें। तो इस पर भृगु जी खड़े होकर के साप दिए, जो शिव व्रत को धारण करते हैं, जो शिव को पूजते हैं मानते हैं, ये सब पाखंडी हो जाए। और उसी सिलसिले में ब्रह्मा जी भृगु जी ने कह दिया जिस वैदिक पंथ के प्रमाण हैं श्री भगवान लक्ष्मीनाथ, उसकी तुम निंदा कर रहे हो, उन ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हो, इसलिए तुम पाखंडी हो जाओ और तुम्हें स्नान नहीं रहे, कोई श्रृंगार नहीं, शुभ लक्षण नहीं। शिव जी के जो भी अनुगामी हैं वे सब ऐसे ही रहे अमंगल वेश में। तो इस तरह से महान लोगों में भी इतना बड़ा असम्मान हुआ, इतना सहन नहीं कर सके। इस कारण से सती जी ने अपने पिता के घर शरीर त्याग दिया। इसके बाद वे पर्वत की बेटी बनी, हिमालय के। तब शिव जी का फिर उन्होंने वर्ण किया है। शिवरात्रि को शिव जी का विवाह हुआ था पार्वती जी से। तो ये कथा मैं इसलिए लिया कि सहन नहीं करने से, अपने को बहुत बड़ा मानने से और दूसरे को मान नहीं देने से, अपने को मान चाहने से इतनी बड़ी सफलियत हो गई। कीर्तन का जीवन भी नहीं रहेगा। दक्ष प्रजापति अंत में वीर भद्र द्वारा मार दिए गए। वीरभद्र जब अपनी पुत्री का सम्मान नहीं किया और पुत्री जग कुंड में कूद करके शरीर त्याग दी, तब भगवान शिव इस न्यूज को सुने तो उनको भी क्रोध इतना हुआ कि वे जटा उखाड़े, जटा से वीरभद्र को पैदा किया और कह दिए तुम जाओ दक्ष को उसके यज्ञ के साथ नष्ट करो, सब ब्राह्मणों को यज्ञ में आने वाले ब्राह्मणों को उचित दंड दो। तो वीरभद्र गए बहुत बड़ी भूतों की सेना लेकर के, और पहले तो पत्थरबाजी किए, यज्ञ यज्ञ मंडप में जितने ब्राह्मण बैठे थे किसी का पैर टूटा, किसी की आंख फूटी, किसी का जीभ लुखार लिए, अंत में दक्ष प्रजापति को वे उनकी छाती पर चढ़ करके उनको मारने लगे। वीरभद्र अंत में मार ही दिए गला दबा करके। तो इतना बड़ा, इतनी बड़ी घटना हो गई केवल पुत्री का आदर नहीं करने से। वो उस क्रोध में आकर के पिता पर रंज होकर के उसने शरीर त्याग दिया। तो मैं भागवत से एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सहन करने से, अपने को छोटा मानने से, दूसरों को मान देने से, स्वयं मान न चाहने से बहुत काम हो जाता है। विशेष करके भगवान के कीर्तन के लिए तो बहुत जरूरी है। यदि अपने को सुनीच मानने नहीं मानेगा, अपने को अधम नहीं मानेगा व्यक्ति, तो उसमें अहंकार आ जाएगा, मैं बड़ा हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं धनी हूँ, इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए। मैं एक तुच्छ जीव हूँ, भगवान की भक्ति से शून्य मेरा जीवन बीत रहा है, अतः नम्र रहे और नम्र रह करके कीर्तन करें। ऐसा नहीं कि, और दूसरी बात है सहनशीलता सीखनी चाहिए। सहन नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, गाली गलौज करेंगे तो हरि नाम कैसे जपेंगे। सदा हरि कीर्तन ही कीर्तन करना है तो सहनशील बनना ही पड़ेगा, और दूसरों को मान देना पड़ेगा, स्वयं मान नहीं चाहना होगा। स्वयं मान की इच्छा न रखे और मान देना, ये तीनों चारों जगह तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीनादपि सुनिश्चयेन तरो रव्यौ सहिष्णुना अमानिना मान देना, तृतीया विभक्ति में है। तो इसके द्वारा यह सिद्ध किया गया कि इनके द्वारा हम समर्थ होंगे, कितनी सुंदर शिक्षा है भगवान की, ये हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं। शिक्षाष्टकम में पढ़ा जाता है। फिर भी अभिमान नहीं जाता है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम प्रेसिडेंट हैं या हम टेंपल कमांडर हैं। सहनशील नहीं बनते हैं। इसीलिए सदा कीर्तनीय हरि, भगवान कृष्ण का कीर्तन सदा नहीं हो पाता है। सदा निरंतर कीर्तन करने के लिए ये जरूरी है, एक एक आइटम पर विचार करना चाहिए। जो बताया गया है, सुनीचे न तरो वृक्ष तृणादपी, सुनीचे न तरो सही सुनना अमानिना और मान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आठ श्लोकों में शिक्षा दी गई है, इसको शिक्षाष्टक कहते हैं। तो आज गौर पूर्णिमा है, हर एक वर्ष भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुणों का स्मरण यह पूर्णिमा कराती है। सदा कीर्तन करना चाहिए और कीर्तन ही एकमात्र साधन है। हरे नाम हरे नाम केवल कलम नास्ते नास्ते नास्ते। इस श्लोक को बार बार मनन करना चाहिए। हमारी निष्ठा बढ़ेगी भगवान में, भगवान के नाम में। और सदा योग्यता बनी रहेगी कीर्तन करने की, कीर्तनी और सदा हरी। बड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़े शब्दों में बातें सिखाई गई, लेकिन कितना यह परिपूर्ण शिक्षा है। चूंकि भगवान शिक्षा दिए हैं, तो प्रतिदिन सुनना चाहिए और सुन करके विचार करना चाहिए। एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर पर विचार करें। हरे नाम तीन तीन बार कहने की क्या जरूरत है? और फिर एवा ही केवलम, केवल हरि नाम ही कली में भव सागर से तरने का उपाय है, या विषय भोग से छूटने का उपाय है, भगवान में प्रेम प्राप्त करने का उपाय है। और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरि नाम। तो यही जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। हरे हरे।